శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు దయాకరమోనే తుమా బినా కే ధ్యానో జగద సంసార హై. ఇస్ భజన్ కి రచన కీ థీ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ జీ నే. నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ఏక రాజకుమార్ థే, పర రాజకుమార్ హోతే హుయే భీ ఉన్హోనే సబ్ ప్రకార కా భౌతిక సుఖ త్యాగా ఔర్ అనేక రచనాయే కీ హై జిన్మే వో యే స్థాపిత కర్తే హై కి చైతన్య మహాప్రభు జీ కౌన్ హై, స్వయం భగవాన్ హై. తో కహ రహే హై చైతన్య మహాప్రభు జీ, ఆప్ మేరే ఉపర్ దయా కీజియే, తుమ బినా కే ధ్యాలు జగత సంసార హై. ఆప్ జో హో సబ్సే దయా ధ్యాలు అవతార హో. ఆప్ అవతారిత హోతే హో క్యూ పతితో కా ఉద్ధార కర్నే కే లియే. तो चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से जो बड़े पतित व्यक्ति थे जगाए मदाए, उनका भी उद्धार हो गया. कैसे? यह हरि नाम के माध्यम के द्वारा. तो आप अवतारित होते हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए. और वो कहते हैं सब पतित में सबसे ज़्यादा पतित कौन है? कौन है? मैं हूं. भक्त ये सोचता है कि मेरे में भक्ति का एक बूंद भी नहीं है. जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूं, वो भगवान का भक्त नहीं. जो ये सोचे कि मेरे में भक्ति का एक बूंद भी नहीं, वो है भक्त. तो महाप्रभु जी का उदाहरण देखो, स्वयं भगवान थे पर उन्होंने क्या कहा समाज में? मेरे में भक्ति का एक बूंद भी नहीं है. तो कहते हैं कि आप अवतारित हुए पतितों का उद्धार के लिए, और सबसे पहले आपकी कृपा का अधिकार मुझे है. जैसे कि खानदान में एक छोटा बच्चा होता है, उसकी चिंता माता पिता को ज़्यादा रहती है बड़े बच्चे की तुलना में, है ना? क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा निर्दोष है, निर्भर है माता पिता के सहयोग पर. उसी प्रकार जो भक्त हैं, भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं. क्योंकि जब भक्त हैं वो हर स्थिति में केवल परम भगवान को ही जानते हैं. तो उन्होंने कहा कि आप अवतारित हुए हो वो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए. और सब पतित में सबसे ज़्यादा पतित कौन हूँ? कौन है? मैं हूँ. हाँ प्रभु नित्यानंदा प्रेमनंद सुखी, कृपा करो काना करे आमी बोलो दुखी. आगे वो प्रार्थना करते हैं भगवान नित्यानंद से. चैतन्य महाप्रभु जी जब पृथ्वी पर आए थे, प्रकट हुए थे अपने सनातन साथियों के साथ, जिनमें से एक थे नित्यानंद जी. नित्य का अर्थ है सनातन, आनंद का अर्थ है आनंद ही आनंद. वैसे तो नित्यानंद जी बालराम जी के अवतार हैं. और किसके? बालराम जी के अलावा और किसके अवतार हैं? लक्ष्मण, लक्ष्मण के भी अवतार हैं. तो नित्यानंद, नित्य मतलब सनातन. यहाँ हॉर्न बहुत आते हैं मोटरों के, हाँ यहाँ सब है ना प्रसाद, मोटरों की आवाज़ आती रहती है. नित्य का मतलब सनातन, और आनंद का मतलब है आनंद ही आनंद. तो जो नित्यानंद की शरण ले वो व्यक्ति आवश्यक ही आनंद अनुभव कर पाएगा. तो कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, नित्यानंदन जी आप मेरे पर दया कीजिए. आप कुर्सी में बैठो, आपको जमीन में बैठे में तकलीफ होगी. नहीं, इनको कुर्सी ला दो. नहीं नहीं नहीं, कुर्सी में बैठे, कुर्सी 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 ला दो. अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है ठीक, ओके. फिर आपको तकलीफ होगी बैठने में. हाँ, हमारे मंदिरों में तो कई लोग कुर्सी में बैठते हैं. दिल्ली बॉम्बे में क्लास हो रही है, 10 आदमी लोग कुर्सी. अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी. तो कहते हैं आप मेरे पर दया कीजिए, मैं इस समय बहुत दुखी हूं। दूसरे शब्दों में, जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हो हम केवल दुखी होंगे, और अगर हम भगवान के शरणागत हो जाए, ठीक है भगवान के शरणागत हो जाए तो आप असली सुख प्राप्त कर सकोगे। तो कहते हैं आप मेरे पर दया कीजिए। फिर आगे कहते हैं दया करो सीता पति अद्वैता गोसाई, तवा कृपा बाले नहीं चैतन्य निथाए। अद्वैताचार्य आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सीता पति, सीता जी के पति थे भगवान राम, और अद्वैताचार्य के भी पत्नी का नाम था सीता। तो आज हम अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। अद्वैता का अर्थ क्या है? जिसके ध्येय और आत्मा में अंतर नहीं हो। आपके देह और आत्मा में अंतर है या नहीं है? सबके, पर भगवान के देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। आचार्य, आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करता है, और अपने आचरण के द्वारा धर्म का उपदेश देता है शास्त्रों पर आधारित। तो परम भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जो सनातन साथी हैं वो भी प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए इस पृथ्वी पर, महाप्रभु जी कौन हैं? स्वयं भगवान, स्वयं कृष्णा, श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्ण नाहे आनिया। वही राधा और कृष्णा प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु जी से 50 साल पहले प्रकट हो चुके थे। दूसरे शब्दों में अद्वैताचार्य 50 साल बड़े थे आयु में। आप पंचतत्व की तस्वीर देखते हो, उसमें आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अद्वैताचार्य की तस्वीर में एक दाढ़ी भी है, सफेद दाढ़ी है ना। क्यों? बाकी जो साथी हैं महाप्रभु जी के, नित्यानंदा जी के दादा श्रीवास, उनके पास नित्यानंदा, उनके पास दाढ़ी नहीं है, पर अद्वैताचार्य की दाढ़ी है क्योंकि वो आयु में बड़े थे किनसे? ये चैतन्य महाप्रभु से। तो अद्वैताचार्य को शिव जी का भी अवतार माना जाता है, महाविष्णु जी के अवतार थे। और अद्वैताचार्य उन्होंने भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की, और तीर्थ के स्थानों की यात्रा के दौरान वो एक महान संत को मिले जिनका नाम था क्या? माधवेंद्रपुरी। अब माधवेंद्रपुरी से परिचित हो, माधवेंद्रपुरी बड़े महान आचार्य थे जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि इस प्रकार भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। जैसे अब चंदन यात्रा करते हो, ये चंदन यात्रा भी पहले माधवेंद्रपुरी ने आरंभ की थी। तो माधवेंद्रपुरी ने अद्वैताचार्य को दीक्षा दी, और अद्वैताचार्य यात्रा करते करते पहुंचे शांतिपुर में। आप जानते हो शांतिपुर कहाँ है? कहाँ है शांतिपुर? बंगाल में, कृष्णनगर के पास। तो अद्वैताचार्य, अगर आप लोग मायापुर जाते हो तो हर साल हम लोग प्रसाद भी बांटते हैं शांतिपुर में, और वहाँ शांतिपुर में एक मंदिर है जहाँ की अभी भी आप उन मूर्तियों को प्राप्त कर सकते हो जिनकी पूजा अद्वैताचार्य ने की थी। वहाँ शालग्राम शिला है जिनकी पूजा अद्वैताचार्य ने की थी। तो अद्वैताचार्य यात्रा करते करते पहुंचे शांतिपुर और माधवेन्द्रपुरी से दीक्षा ली। शांतिपुर में उस समय हरिदास ठाकुर भी रह रहे थे और हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख बार जप करते थे। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर एक साथ निवास कर रहे थे। सुबह से रात उनका एक ही धंधा था। वो धंधा क्या था? हरि का नाम और शास्त्रों का अध्ययन। सारा दिन भागवत का अध्ययन करते थे और हरि नाम का उच्चारण। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने समाज की स्थिति देखी। सो दिस ऑल योर कलीग्स फ्रॉम योर कॉलेज। ओके, तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने समाज की स्थिति देखी तो उन्होंने देखा, सोचा, ये जो समाज की आज स्थिति है, अगर हम वन जीवों का उद्धार करना चाहते हैं तो भगवान को स्वयं अवतारित होना पड़ेगा और इस इच्छा को सफल बनाने के लिए अद्वैताचार्य के पास शालिग्राम शिला थी। मेरे कमरे में भी अनेक शालिग्राम शिला थे। शालिग्राम शिला भगवान का रूप है जो कि पत्थर के रूप में प्रकट होता है और इस शालिग्राम शिला भगवान में कोई अंतर नहीं। तो वो जो 2 शालिग्राम शिला जिनकी पूजा अद्वैताचार्य कर रहे थे, उनका दर्शन आप आज भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप अगली बार मायापुर जाओगे तो शांतिपुर में वो मंदिर है जहाँ की आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर दिन रात हरि नाम का जाप कर रहे थे, शास्त्र और श्रीमद भागवत का अध्ययन चर्चा, और अद्वैताचार्य अपने शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे तुलसी के पत्ते के साथ और जल के साथ। भगवान की पूजा करना कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं शास्त्र में, पत्रम पुष्पम फलम थोया। तुलसी का पत्ता दो, पत्रम पुष्पम फल दो, और क्या? फलम फल थोयम पानी। भगवान ये भी नहीं कहते बिस्लेरी पानी होना चाहिए, कहते नलके का पानी भी चलेगा। तो अगर आप प्रेम और भक्ति के साथ अर्पण करोगे तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। तो अद्वैताचार्य देखिए तुलसी के पत्ते से कर रहे थे बस, और गंगा जल से। और क्या थी उनकी प्रार्थना? भगवान प्रकट हो जाएं। और अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर की पुकार के उत्तर में भगवान प्रकट हुए। कहां? कहां? नादिया में, नवद्वीप में प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के पुत्र के रूप में। तो अद्वैताचार्य और महाप्रभु का बड़ा गहरा संबंध था। जब भगवान प्रकट हुए थे, अद्वैताचार्य थे माधवेन्द्रपुरी के शिष्य, पर जो महाप्रभु जी के पिता और माता थे उनके गुरु थे अद्वैताचार्य। जब भगवान प्रकट हुए थे तो अपनी माता के स्तन का दूध नहीं पी रहे थे। उन्होंने दूध पहले तो पी रहे थे, फिर दूध पीना बंद कर दिया। तो उनकी माता पिता को चिंता थी, हमारा बेटा सच दूध नहीं पी रहा माता के स्तन का। तो वो गए अद्वैताचार्य के पास, क्योंकि जैसे मैंने कहा अद्वैताचार्य की आयु महाप्रभु जी से 50 साल अधिक थी। दूसरे शब्दों में अद्वैताचार्य 50 साल के थे जब महाप्रभु जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा अद्वैताचार्य से कि मेरा बेटा उसकी माँ का स्तन का दूध नहीं पी रहा, क्या कारण है? तो अद्वैताचार्य ने कहा क्योंकि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी पत्नी ने दीक्षा नहीं ली हुई और तुम्हारा बेटा केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहता है, इसलिए माता के स्तन का दूध नहीं पी रहा। तो फिर अद्वैताचार्य ने एक जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता दोनों को दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद बेटे ने दूध पीना शुरू कर दिया। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के माता पिता दोनों के गुरु थे। तो अद्वैताचार्य की और हरिदास ठाकुर की प्रार्थना के उत्तर में परम भगवान प्रकट हुए इस पृथ्वी पर और भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। तो अद्वैताचार्य को महाप्रभु जी बहुत ही आदर देते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक समय अपना विश्व रूप महाप्रकाश का रूप प्रकट किया था और कोई चुने हुए भक्तों को ये दर्शन मिला, जिनमें एक थी अद्वैताचार्य, जिन्हें उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। आज के जमाने में अनेक व्यक्ति दावा करते हैं हम भगवान के अवतार हैं, पर आप भगवान के अवतारों को पहचान सकते हो कैसे? शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। भगवान गीता में कहते हैं जन्मा कर्म चामे दिव्यम, मेरा संसार में प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। जब परम भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। वो अद्भुत लीला की नकल तुलना ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। भगवान अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की थी इस पृथ्वी पर। जैसे कि जब महाप्रभु छोटे से ही थे तो एक समय एक ब्राह्मण यात्री उनके घर में रहने आया था। महाप्रभु जी के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा इतने धनी तो नहीं थे, पर उनकी आदत थी ब्राह्मणों की सेवा के लिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि उनके पिता घोड़मोहन ढे, वो भी सदा उनकी इच्छा रहती थी कि संतों की सेवा की जाए। तो घोड़मोहन ढे भी संतों को निमंत्रण देते थे उनके घर में आकर रहने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो एक ब्राह्मण यात्री आया था और जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें निमंत्रण दिया, आप ठहरिए हमारे घर। जो ब्राह्मण हैं वो अक्सर अपना काम खुद ही करते हैं। तो इस ब्राह्मण यात्री ने भोग बनाया था और भगवान कृष्ण को अर्पण कर रहे थे खाने से पहले। जैसे वो भोग अर्पण कर रहे थे, निमाई ने आकर वो भोग को झूठा कर दिया। जब झूठा कर दिया तो ब्राह्मण ने कहा हे, अब मैं भगवान को कैसे लगाऊं भोग? तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा सो जाऊं आज। ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता। भौतिक संसार में हम हमेशा एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे कारण मुझे ये हुआ वो हुआ फलाना। पर ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता। अगर ब्राह्मण को कोई कठिन परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है तो वो सोचता है ये भगवान की असीम कृपा है, मुझे तो इसे हजारों गुना ज़्यादा भयंकर परिणाम भोगना चाहिए था, पर भगवान की कृपा से थोड़ी मात्रा में ही मैं ये कष्ट भुगत रहा हूँ। तो उस ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मण ने ये नहीं कहा ए बदमाश निमाई मैं खाना झूठा कर देती मैं भूखा रहूँगा। उसने कहा चलो भगवान की शायद इच्छा है कि मैं भूखा रहूँ। पर विश्व रूप जो महाप्रभु जी के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा नहीं 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 तुम भूखा नहीं सो सकते। और उन्होंने जाकर उनसे विनती की कि आप फिर से प्रसाद तैयार करो। तो दूसरी बार फिर तैयार किया ब्राह्मण ने और वो भगवान को भोग लगा रहा था। जैसे भोग लगा रहा था शैतान निमाई फिर वहां पहुंच गए और झूठा कर दिया प्रसाद। तो जब दूसरी बार भी झूठा किया तो ब्राह्मण ने कहा आज भगवान की इच्छा कि मैं भूखा सोऊं। पर फिर जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हो, मैं अपने शैतान बेटे को बंद कर देता हूं एक कमरे में दूरी पर, तो आपको किसी प्रकार से वो तंग नहीं करेगा। तो तीसरी बार वो फिर आए, तीसरी बार फिर जब भोग लगा रहे थे लगभग रात के 12 बज गए थे और खानदान के सब सदस्य सो गए थे। तीसरी बार जब वो भोग लगा रहे थे निमाई फिर वह पहुंच गया। जब तीसरी बार पहुंच गए ब्राह्मण ने कहा फिर आ गए, आपके पिता ने तो कहा था कि आपको बंद कर दिया दूरी पर। तो निमाई ने उस वक्त अपने श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया और कहा अरे भाई तुम तो भोग किसे लगा रहे हो, मुझे तो लगा रहे हो। तो जब ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा इस बालक के द्वारा, तो ये देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत ही प्रणाम किया। पर फिर भगवान ने उन्हें एक आदेश दिया, तुम भविष्य में किसी को नहीं कहना कि तुमने मेरा दिव्य दर्शन देखा है या तुम जान कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर सब पहचान जाते हैं कि निमाई स्वयं भगवान है तो जो आदर है वो थोड़ी रहता, भय है वो थोड़ी रहता। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे तो योग माया शक्ति के द्वारा उनके माता पिता भाई बहन साथियों को कुछ शक भी नहीं था कि भगवान है। जब भगवान अनेक बड़े बड़े राक्षस राक्षसियों का वध करते थे तो जो माता पिता थे सोचते थे शायद हमारा बेटा नारायण का रूप है, शायद ही कोई देवता है, शायद भगवान की खास कृपा है इस पर कि इसमें इतनी शक्ति है, वैसे सोचते थे। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और दिव्य रूप प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई ना कर पाया है ना कर पाएगा, ना कोई देवता कर पाया है ना कर पाएगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अनेक दिव्य लीलाएं प्रकट की। एक समय एक महान ब्राह्मण मायावादी सर्वम भट्टाचार्य को आकर्षित किया कृष्ण भगवान की भक्ति के प्रति, और फिर सर्वम भट्टाचार्य ने 100 स्तुतियों की रचना की ये स्वीकार करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, स्वयं भगवान है। और फिर भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया, किस रूप में दर्शन दिया, सद्भुज 6 हाथों में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य को अपना महाविराट रूप दिखाया था। विराट रूप के विषय में आप कहाँ पढ़ते हो, सबसे पहले गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा मैं तुम्हें देखने के दर्शन लेने के लिए खास नेत्र दे रहा हूं जिसके द्वारा वो देख सके। हाँ ये विराट रूप का दर्शन ले। तो अद्वैताचार्य का भगवान ने विराट रूप का क्या दिया, दर्शन दिया। तो अद्वैताचार्य के विषय में यशोदा माता सच्ची माता के हृदय में हमेशा थोड़ा क्रोध था। आप बोलोगे अद्वैत कैसे क्रोध हो सकता है सच्ची माता के हृदय में अद्वैताचार्य के प्रति, कोई जानता है क्यों कैसे? हाँ प्रभु जी के बड़े भाई विश्वरूप घर छोड़कर चले गए थे सन्यास लेके, और अब छोटा बेटा भी चले गया सच्ची माता का, तो उनकी माँ उनके हृदय में ये क्रोध था, शक था कि शायद अद्वैताचार्य ने मेरे बेटे को प्रभावित किया है कि वो सन्यास लें। तो सब कहते थे महाप्रभु जी से आप सब पर कृपा दे रहे हो, सबको कृपा दे रहे हो, पर अपनी माँ को कृपा क्यों नहीं दे रहे, सच्ची माता को? तो सच्ची माँ महाप्रभु जी ने कहा मेरी माँ ने अपराध किया है, किसके प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति। तो जब लोग कहते थे अद्वैताचार्य को कि सच्ची माता ने अपराध किया है आपके प्रति, वो कहते राम राम सच्ची माता तो भगवान की माता है, मेरे सामने वो अपराध कैसे कर सकती है। तो वो कभी स्वीकार ही नहीं करते थे कि सच्ची माता ने किसी रूप से कुछ अपराध किया है। एक दिन जब भगवान ने अपना महाकीर्तन समाप्त किया तो सब प्रणाम कर रहे थे भगवान को, तो सच्ची माता ने देखा कि अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे, तो पीछे से जाकर उनके चरण को छूकर धूल ले ली। जैसे आप लोग भी देखते हो कई बार प्रणाम करते हो तो पीछे से कोई ब्रह्मचारी आता है और धूल आपके चरण छूकर धूल ले लेता है। तो सब भगवान ने देखा क्योंकि माँ सच्ची माता उनके चरणों की धूल ले रही है, फिर उन्होंने कहा अब मेरी माता के हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि वो पहले सोच रही थी कि मेरे बेटे को प्रभावित कर दिया है अद्वैताचार्य ने, पर अब मेरी माँ ने अद्वैताचार्य से माफ़ी मांग ली है। तो इस उदाहरण के द्वारा आपको क्या सूचना मिलती है कि वैष्णव सिद्धांत में हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अगर आप वैष्णव अपराध से बचोगे तो भक्ति में परिवर्तन होगा, और अगर वैष्णव अपराध से नहीं बचोगे तो भक्ति में रुकावट आ जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे। अब सनातन गोस्वामी कौन है जानते हो? जानते हो? हाँ, छह गोस्वामियों में से एक हैं। और एक समय मुसलमान राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, लगभग प्रधानमंत्री जैसे, फिर उन्होंने सब कुछ त्यागा और महाप्रभु जी की सेवा में जुड़े। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भगवानो जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता मेरी। अनेक जन्म मृत्यु में गुजरने के पश्चात वह भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज मिलता है। जैसे आप सबको भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, भक्ति के महिमा के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो बीज कैसे उगता है? बीज उगता है जब आप उसे पानी पिलाते हो। तो पानी पिलाने का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम सुनना। जब आप श्रवणम करोगे तो भक्ति का बीज उगेगा और ये बीज जो है फल पैदा करेगा, जिसको खाने से जन्म मृत्यु के बंधन से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। पर महाप्रभु ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि भक्ति का बीज उगते जाए तो अपने आप को भक्तों की संगत में रखो। जैसे कि आप मकान बनाते हो, बड़ी कोठी बनाते हो, फिर दीवार भी बनाते हो, है ना, आपकी खेती है तो पड़ोस में आप वायरिंग भी करते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि दीवार नहीं बनाओगे, वायरिंग नहीं करोगे तो गलत व्यक्ति अंदर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार ये देखने के लिए कि हम माया के प्रभाव में नहीं आए, हमें अपने आप को भक्तों की संगत में रखना चाहिए। पर आगे महाप्रभु जी ने कहा कि कई बार आप एक खूबसूरत बगीचा बनाओ और एक पागल हाथी को छोड़ दो अंदर जाने के लिए, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? तोड़ फोड़ कर देगा। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हरि नाम के जाप का लाभ तो होगा, पर अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो लाभ जाप का हमें लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने कहा हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो यही महाप्रभु जी ने कहा मेरी माँ सोचती है कि अद्वैताचार्य ने मेरे बड़े भाई को प्रभावित किया और मुझे किया। इस प्रकार का द्वेष शुद्ध भक्त अद्वैताचार्य के विषय में रखना अच्छा नहीं है। और जब सच्ची माता जाती थी और कहती थी अद्वैताचार्य से मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा विचार है, वो कहते नहीं नहीं आप अपराध कहाँ कर सकते हो, आप तो भगवान की माँ हो। तो जब महाप्रभु ने देखा कि माता ने अद्वैताचार्य के चरणों की धूल ले ली है, फिर वो बड़े प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु जी अद्वैताचार्य का बहुत आदर देते थे, बहुत इज्जत देते थे, पर अद्वैताचार्य खुश नहीं थे। अद्वैताचार्य सोचते थे ये स्वयं भगवान हैं और मुझे इतना आदर दे रहे हैं। तो अद्वैताचार्य ने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उन्हें डांट पड़ेगी। किसके डांट? हाँ, प्रभु जी से डांट पड़ेगी। अद्वैताचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार आरंभ कर दिया। आपका बनारस तो मायावादी सन्यासियों का अड्डा है, हेडक्वार्टर है ना। जब चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भी एक समय हजारों मायावादी सन्यासियों की एक सभा हो रही थी और महाप्रभु जी आए बैठे जहां के लोग पांव धोते हैं मंदिर जाने से पहले, तो जो स्वामी महात्मा थे सन्यासी वो बैठे हुए थे ऊंचे प्लेटफॉर्म में। जब उन्होंने देखा ये खूबसूरत सन्यासी को बैठे हुए जो जहाँ पांव धोते हैं, तो उनके दर्शन से उनको ऐसे लगा कि एक तेज प्रकाश रोशनी आ रही है उनके शरीर माथे से, तो समझ पाई ये स्वयं शर भगवान ही है। तो महाप्रभु जी को जब ये मिले मायावादी सन्यासी, उन्होंने कहा अरे ये तो वो प्रसिद्ध नायम निमाई पंडित है, क्योंकि निमाई ने छोटी सी आयु में ही उस समय के सब महाविद्वानों को हरा दिया था। जैसे आजकल क्रिकेट कंपटीशन होता है, फिल्मों की कंपटीशन होता है, उस समय में कंपटीशन होता था आध्यात्मिक विषय पर, और निमाई ने सबको हरा दिया था। तो हाँ वो तो मायावादियों को पता था, तो उन्होंने कहा कि आप तो इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, आपको तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, क्या ये हरिनाम पागलों जैसे कर रहे हो। जैसे कई बार आप हरिनाम में जाते हो तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये हरिनाम से हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहे हो। कई बार विदेशों में जब हमारे भक्त हरिनाम में जाते हैं तो भारतीय लोग शर्मा जाते हैं, कह रहे क्या हमारे धर्म की बेइज्जती हो रही है। अरे भाई धर्म की बेइज्जती नहीं हो रही, धर्म की कदर हो रही है। यह हरि नाम के माध्यम से ही प्रभुपाद जी ने सारे विश्व को जोड़ा। किस माध्यम में? इस भक्ति योग में। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे पेड़ के नीचे थॉमकिन स्क्वेयर पार्क में अपने ढोलकी के साथ कीर्तन कर रहे थे, और इस हरि नाम से उन्होंने सारे विश्व की प्रजा को जोड़ा भक्ति योग में। तो यह हरि नाम है असली साधन। तो हरि नाम का जाप सबके लिए महत्वपूर्ण है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहें। तो अद्वैताचार्य, तो ये मायावादी सन्यासी ने पूछा आप इतने बड़े विद्वान हो क्यों नहीं पढ़ रहे शास्त्रों को। उन्होंने क्या कहा, मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप केवल ये हरि नाम के योग्य हो। फिर महाप्रभु जी इस प्रकार सब मायावादी सन्यासियों को आकर्षित कर दिया, और फिर 10,000 मायावादी सन्यासी वैष्णव बन गए, 10,001,000। और फिर उन्होंने बनारस की सड़कों में हरि नाम का कीर्तन किया। तो हम भक्तों को भी हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि बनारस वो प्रसिद्ध शहर है जहाँ की महाप्रभु जी ने बड़ी गहरी लीला प्रकट की है। चैतन्य सनातन गोस्वामी जब जेल से निकले थे महाप्रभु जी को मिलने आए, कहाँ आए, वाराणसी में। सनातन गोस्वामी को राजा ने जेल में डाल दिया था, क्योंकि राजा क्योंकि सनातन गोस्वामी ने अपना त्याग पत्र दे दिया था सरकारी नौकरी से। तो जब भाग के आ रहे थे छुप छुप कर, तो आ रहे थे कहाँ, महाप्रभु जी को मिलने काशी मिश्रा के घर में वाराणसी में। तो वहाँ वाराणसी शहर जो है हम वैष्णव के लिए बड़ा प्रिय शहर है, क्योंकि महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की और यहाँ इस शहर में लाखों मायावादियों को प्रभावित किया। मायावादी किसे कहते हैं कौन बताएगा, मायावादी का अर्थ क्या है? ये सब मायावादी के कई रंग हैं। एक ये है हम भगवान हैं, दूसरा है ये सोचे जब भगवान प्रकट होते हैं वो साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, फिर एक और रूप है सोचना भगवान निराकार हैं इत्यादि। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादियों की संगत से दूर रहो, ये तो महाप्रभु का आदेश। तो महाप्रभु जी ने इस प्रकार हजारों मायावादियों को प्रभावित किया कृष्ण भक्ति के प्रति। तो पर अद्वैताचार्य को ये पसंद नहीं आता था कि महाप्रभु जी उन्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं, उनको पता था ये स्वयं भगवान हैं। तब अद्वैताचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार आरंभ कर दिया। क्या है मायावादी सिद्धांत? तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान हैं। तो आस्ते आस्ते ये सूचना पहुंच गई महाप्रभु जी तक। मायावादी ने तो कहा कि हर चैतन्य महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने कहा हर स्थिति में मायावादियों की संगत से बचकर रहो। तो जब चैतन्य महाप्रभु कोई सूचना मिली कि अद्वैत आचार्य मायावादी बन गया है, वो विश्वास नहीं कर पाए। अद्वैत आचार्य मायावादी बन गया? उन्होंने नित्यानंदा से पूछा। नित्यानंदा ने कहा हाँ मैंने भी सुना है कि आजकल अद्वैत आचार्य मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। तो तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान। तो जब अद्वैत आचार्य आए चैतन्य महाप्रभु जी के पास, तो महाप्रभु जी ने अपने पैर से उनके पीठ पर मारा, तुम मायावादी बन गए। तो जब उन्होंने अपने पैर से पीठ पर मारा अद्वैत आचार्य के पीठ पर, तो अद्वैत आचार्य ने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने पूरा नाटक किया था कि उन्हें भगवान किसे डांट पड़े, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य को इतनी इज्जत देते थे। तो महाप्रभु जी की तो अद्वैत आचार्य ने ये नाटक किया जिसके द्वारा वो महाप्रभु जी को क्रोधित करें और फिर महाप्रभु जी उन्हें डांटें। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य की अनेक लीलाएँ हैं और अद्वैत आचार्य की कृपा से महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो हमें इस शुभ अवसर पर अद्वैत आचार्य की प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। तो ये जो हम भजन गा रहे थे, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तवा कृपा बाले पाई चैतन्य निताय। तो वो कहते हैं नरोत्तमदास ठाकुर कि सीता देवी के पति अद्वैता जी, आप हमारे पर कृपा कीजिए, आप कृपा नहीं करोगे तो हमें महाप्रभु नित्यानंद की कृपा प्राप्त नहीं होगी। आगे कहते हैं आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट युग सी जीवा प्रभु लोका नाथ। कहते हैं ये जो छह गोस्वामी हैं वृंदावन के, जैसे कि परसों हम भक्तों ने रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव तिथि मनाई थी। मनाई थी आप लोगों ने? नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी, छह गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ क्या है? जिसका मन और इंद्रियों पर वश हो। आज के जमाने में एक आपको गोस्वामी मिलते हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, स्वामी मिलते हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पर गोस्वामी का अर्थ है जिसका मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, वश हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक करोड़पति पिता के इकलौते पुत्र थे, पर उन्होंने सब कुछ त्यागा किस लिए? कृष्णा भक्ति के लिए। उनके माता पिता उस समय के सबसे करोड़पति धनी खानदान के थे, और उन्होंने जब देखा कि हमारे बेटे का इतना आकर्षण है चैतन्य महाप्रभु जी की आंदोलन के प्रति, तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ। आजकल भी आप ये देखते हैं ना, ये रिवाज, कोई ब्रह्मचारी अगर भक्ति में रुचि ले रहा है तो घर वाले यही सोचते हैं इसको विचलित कैसे किया जाए, जल्दी से शादी करवा दें। तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी एक बहुत खूबसूरत स्त्री के साथ। पर जब भी रघुनाथ दास की रुचि थी महाप्रभु जी के आंदोलन के प्रति, तो बार बार घर से भाग जाते थे महाप्रभु जी के साथ, उनके कीर्तन के भक्तों के साथ रहने के लिए। तो उनकी माँ ने कहा उनके पति से, रघुनाथ के पिता से उनकी पत्नी ने कहा इसको हमें बांध देना चाहिए कि रस्सी के साथ के घर से भागे नहीं। तो उनके पिता ने कहा अरे भाई तुम खूबसूरत पत्नी द्वारा तो उसको बांध नहीं पाए, अभी रस्सी से बांधोगे। खूबसूरत पत्नी दिलानी जब भी उनका आकर्षण है उनके शिक्षा के प्रति। तो जो परसोदा रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव और आज हम मना रहे हैं अद्वैत आचार्य का आविर्भाव, तो हमें अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी हमें कृपा प्राप्त हो। तो वो कहते हैं ये छह गोस्वामी हैं, आप कृपा दीजिए। फिर सना ये स्वरूप दामदर और गोविंदा, ये दो थे चैतन्य महाप्रभु जी के सेक्रेटरी, और कहते हैं और प्रभु लोकनाथ, लोकनाथ महाराज नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु थे। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास के एक ही शिष्य थे बस, नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे उन्होंने कहा, आरम्भ एक राजा राजकुमार थे, पर उन्होंने हर प्रकार का भौतिक सुख त्यागा भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए। तो नरोत्तम दास ने जब लोकनाथ से ये निवेदन किया, मुझे दीक्षा दो, लोकनाथ ने कहा तुम बहुत योग्य भक्त हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तो पर नरोत्तम की इच्छा थी कि वो दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करें। तो लोकनाथ दास जब वृंदावन में आए थे, एक खास स्थान था जहाँ वो जो रोज जाते थे पेट साफ करने के लिए, पर वो देखते थे कि अगले दिन जब वो वापस लौट रहे हैं, वहीं जब पिछले दिन पेट साफ करते थे वो जगह साफ हो जाती थी। तो एक दिन झाड़ पेट साफ करने के बाद झाड़ियों के पीछे वो छुप गए देखने के लिए कौन आता है ये टट्टी वगैरह साफ करने को। तो उन्होंने देखा ये नरोत्तम दास ठाकुर रोज आता है और वो पूरे टट्टी पेशाब सब साफ करता है। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें इतनी निम्रता है, इतनी श्रद्धा है, उनसे दीक्षा लेने के लिए, फिर उन्होंने जाकर दीक्षा ली दी। तो वो प्रार्थना करते हैं क्या कि छह गोस्वामी स्वरूप दामोदर और गोविंदा और अपने गुरु लोकनाथ दास से उनकी कृपा के लिए। आगे कहते हैं दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें रामचंद्र काविराज की संगत प्राप्त हो। रामचंद्र काविराज गृहस्थ भक्त थे और भक्तों की संगत की आवश्यकता है। शास्त्र में कहा गया है साधु संगत साधु संगत सर्व शास्त्र का है। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है कि साधु की संगत हमें ग्रहण करनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि इस संगत द्वारा हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें पांच नियम दिए, विधियां दी जिनका हमें पालन करना चाहिए, पहला था क्या? हरि नाम का जाप। दूसरा क्या था? भगवत गीता का अध्ययन। तीसरा साधु संगत, साधु संगत। इसलिए हम मंदिर सब भक्तों की संगत का लाभ उठाते हैं। अगर हम आध्यात्मिक परिवर्तन करना चाहें तो ये साधु संगत की आवश्यकता है। तो तीसरा था साधु संगत, चौथा था आचार्य विग्रह की पूजा। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अनेक रूपों में, इस आचार्य विग्रह की हमें पूजा करनी चाहिए। और पांचवा क्या था? धामवासी बनो। आपका बनारस अब धाम है, महाप्रभु जी भी आए थे यहाँ बनारस से धाम। अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ की महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की है ना। तो अगर हम इन पांच चीज़ों का कार्य करेंगे तो जहाँ हो वहाँ रहते ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम भक्तों को इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन?
मनुष्य जब पहली बार अपनी तरफ से भक्ति के लिए प्रयास करता है और हरिनाम जब प्रारंभ करता है, कुछ दिनों तक अनवरत रूप से उसे करता रहे, तो उससे लाभ पहुंच रही है, इसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे
समझ गया। सबसे पहले भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी नामों का उच्चारण करेगा उसका इसे लाभ पहुंचेगा। पर आपका प्रश्न है हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? उसका एक लाभ यह है कि हृदय की मैल दूर होगी। उसका लाभ यह है कि आप हरि नाम जो कर रहे हो वो ज़्यादा सावधानी से करोगे, उसका एक लाभ यह है कि आप प्रयास करोगे माया के प्रभाव से बचने के लिए, जैसे आप बैठते हो हरि नाम करने, शास्त्रों को पढ़ने, तो कई बार देखते हो हरि नाम कर रहे हो पर दिल नहीं लगता, पढ़ रहे हो पर कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अगर आप सावधानी से करोगे तो फिर हृदय की मैल दूर होगी और आप ज़्यादा आसानी से भगवान के दिव्य रूप को समझ सकोगे। तो जब आप जाप कर रहे हो तो हरि नाम में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवत में रुचि बढ़ेगी, सेवा माध्यम में रुचि बढ़ेगी, भक्तों की संगत का लाभ उठाने में रुचि बढ़ेगी। ठीक है,
इस तरह का परिवर्तन हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि लाभ होगा
क्या।
अगर इस तरह के परिवर्तन हमारे अंदर हो रहे हैं महाराज जी, तो हमें समझना चाहिए कि हरि नाम से लाभ हमें पहुंच सकता है।
जरूर, जैसे कि आप बीमार होते हो तो कैसे पता लगता है बुखार कम हो रहा है, ये देखकर कि टेस्ट आ रहा है आपको, है ना, भूख है। तो इसी प्रकार हमने ये देखना कि हम हरि नाम के मान, हम भक्ति में आगे बढ़ने के नहीं, भक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण क्या है, हरि नाम करने में रुचि, भक्तों की संगत का हम लाभ उठाना चाहते हैं, शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, जो कार्य प्रतिकूल है उसे हम बचना चाहते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया यही है तमाम प्रपद्यंते, जितनी श्रद्धा में कोई मेरे शरणागत होता है उतनी मात्रा में ही मैं उसे बुद्धि देता हूँ मुझे समझने के लिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, No, they're all, they're the same.
You asked who is, so you said Lakshmanji.
Yeah.
So I was wondering if Balramji and Lakshmanji are the same or the same?
Same. Or, so, who are the boys from your campus? Show of hands. Okay. Is your campus very far from here?
Yeah, so they are
near. 2 kilometers. What's that? Is it what? Banaras Hindu University?
Yes.
BHU.
Yes.
Okay, but you're studying in the engineering section. Okay, I can meet with you all in a small group. I said, okay. Hare Krishna.